ओम शांति। अभी संसार में जो दिन चल रहे हैं लौकिक में पितृपक्ष, जब पूर्वजों को याद करते हैं तो हम यज्ञ में यहाँ रहते हुए किनको याद करें, हमारे लौकिक पूर्वज या अलौकिक पूर्वज, है ना? हमारे अलौकिक पूर्वज बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही ऊंची आत्माएं, न केवल अपने परिवार के लिए लेकिन पूरे संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आत्माएं हैं। जब वो आत्माएं इस धरती पर सत्वप्रधान होती हैं, तो संसार भी सत्वप्रधान होता है। जब वो आत्माएं तमोप्रधान होती है तो संसार भी तमोप्रधान होता है। तो ऐसे आदि रतन यज्ञ के नींव हम कहे, ऐसे महान आत्माएं अपनी पूर्वज थे। वैसे तो गर्व से कहते हैं कोई भी, हमारे दादा परदादा ऐसे थे। कौन से घराने को बिलोंग करते हैं तो बहुत ही गर्व से कहते हैं लौकिक में। तो हम भी गर्व से कहते हैं हमारे पूर्वज कौन थे। उनको याद करने के साथ साथ उनके जैसे बनने की कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि सेवाओं के इस बिजी शेड्यूल में हम केवल उस पर फोकस करते हैं, या वर्तमान में जो भी चल रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन जब हम दादियों को देखते हैं, दादियों की जीवन कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत प्रेरणाएं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो इस यज्ञ का नींव है त्याग तपस्या, है ना, सेवाओं का जो वट वृक्ष अभी देख रहे हैं, बहुत ही बृहद रूप से, बहुत विशाल रूप से हम अभी देख रहे हैं, लेकिन उसका फाउंडेशन जो है वो है त्याग और तपस्या। अभी बाबा के यज्ञ के साथ जुड़ना या संस्थाओं, इस संस्था के साथ जुड़ना इजी हो जाता है क्योंकि इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है और लोगों को पता है मूल्यों के द्वारा, ये संस्था के द्वारा क्या किन मूल्यों को हम दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन आदिकाल में जब हम देखते हैं पूरे लोग बहुत विरोध करते थे, बहुत ही अगेंस्ट थे, और यज्ञ के बारे में बहुत सारे नेगेटिविटी फैला हुआ था, समाज में गालियां मिलती थी। उस समय बाबा के बन के रहना, बाबा के लिए जीवन देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी इस संस्था के साथ जुड़ना एक गौरव की बात हो जाता है, एक प्रतिष्ठा की बात होती है, क्योंकि पॉपुलर है यज्ञ अभी। लेकिन उस समय जब पॉपुलर नहीं था, लोग जानते नहीं थे, उसके लिए उस समय यज्ञ के लिए मर मिटना बाबा में निश्चय कितना चाहिए था। ऐसे समय पर इन सभी ने अपने जिंदगी दी है, उनके मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो हर एक आत्मा, चाहे जिन कुछ लोगों को हम जानते हैं बस, जो स्टेज पे थे या फिर थोड़ा क्लासेस कराते थे, जिनका रिकॉर्डिंग्स है तो उनको जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दादियां थी जिनका कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, जिनके बारे में कोई जानते नहीं है, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है यज्ञ में। तो उन सभी आत्माओं को आज हम याद करते हैं और उनके जो विशेषताएं हैं थोड़ा बहुत हम धारण करने की हम कोशिश जरूर करें। और हम अपने मेमोरी को भी थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करें, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं फोटोग्राफ कौन है? यशोदा माता। कौन थे? ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी, दादा लेखराज की लौकिक पत्नी, ब्रह्मा बाबा की लौकिक धर्म पत्नी, जिन्हें यज्ञ में सभी यशोदा मैया कहकर बुलाते थे। यशोदा माता को बहुत शुद्ध नशा रहता था कि भगवान स्वयं यशोदा भवन में आए हैं, और उन्हें ये भी शुद्ध नशा था जब भगवान मेरे पास आए हैं तो श्री कृष्ण भी मेरे पास ही आएंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ यशोदा माँ ने भी अपना सब कुछ यज्ञ में समर्पित कर दिया। वे एक सर्वोत्तम योगिन थी, है ना? ब्रह्मा बाबा ने तो सर्वस्व त्याग किया, उन्होंने पहचाना, शिव बाबा को पहचाना, लेकिन उनके साथ साथ यशोदा माँ के का भी जो त्याग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको कम ही हम याद करते हैं, क्योंकि शिव बाबा के प्रवेशता होने तक दादा लेखराज की पहचान थी और यशोदा माँ हमेशा उनके उनको पति के रूप में देखते थे। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो वो ऐसा संबंध नहीं रहा, फिर वो विश्व पिता बन गए हैं, है ना? ब्रह्मा बाबा बन गए, सभी उनको पिता के रूप में देखते थे, सभी लोग आते थे, बाबा के गोदी में भी जाते थे, उनके रास भी करते थे, कृष्ण का श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। तो उसको एक्सेप्ट करना यशोदा माँ के लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि संबंध अभी चेंज हो रहा था, और उन दिनों में फिर उनको एक्सेप्ट करना, अभी तक जिन नजरों से ब्रह्मा बाबा को देख रहे थे और अभी पूरी तरह उस रीति से पिता के रूप में देखना या फिर एक आत्मा के रूप में देखना बहुत मुश्किल रहा है। फिर भी उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, ब्रह्मा बाबा के रूप में एक्सेप्ट किया, शिव बाबा में इतना विश्वास था, ट्रस्ट था, तो उसके कारण से उन्होंने भी अपना सर्वस्व त्याग करके ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के इस पथ पर वो चल पड़े। तो आपका जो त्याग है, निश्चय है, वो बहुत ही सराहनीय है, और नशा भी जरूर उनको था। ये जो चित्र देख रहे हैं कौन है? ब्रिजेंद्र दादी। ब्रिजेंद्र दादी कौन थे? दादा लेखराज के लौकिक बहू, है ना? ब्रिजेंद्र दादी जी बाबा की लौकिक पुत्र वधू, लौकिक नाम उनका था राधिका। पहले पहले जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो दादी ने वो सब दृश्य अपनी आंखों से देखा। सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, आदिदेव पढ़ा होगा, तो सभी को ये पता है कि जब शिव बाबा का मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो सबसे पहले ब्रिजेंद्र दादी ने देखा था, उन्होंने वो लाइट का अनुभव उन्होंने किया था। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त था। बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे कि बच्ची 84 जन्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत समीप संबंध में रही है, इसीलिए इस अंतिम जन्म में भी ब्रह्मा की आत्मा के इतने करीब संबंध में है। दादी जी वज्र के समान दृढ़ और इंद्र के समान फरिश्ता बनी। दादी जी का जो विवाह हुआ था ब्रह्मा बाबा के पुत्र के साथ, तब वो एक किताब में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर अनुभव दादी ने बताया था कि बहुत बड़े घराने के थे, बहुत अमीर घराने के थे। जब विवाह होने वाला था उनके भाई ब्रिजेंद्र दादी के जो भाई थे, तो वो आकर के ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज के साथ मिले और उन्होंने कहा कि मेरी बहन जो है वो किचन में काम नहीं करेगी, क्योंकि इतने प्यार से पाला पोसा है, इतना नाजुक से, इतना प्यार से उनको पाला है, तो वो काम घर का काम नहीं करेगी और रसोई में काम नहीं करेगी। माना उस उन दिनों में इतने नाजुक रीति से, इतने प्यार से दादियां पली बड़ी, और जब विवाह होकर के, जब शादी करके आए घर में, तो ऊपर से नीचे तक इतने सारे गहने पहनते, हर रोज इतना गहना पहनते थे, तो इतने बड़े घराने के थे। लेकिन जब बाबा इस यज्ञ की स्थापना की, एक सेकंड में सोचा भी नहीं कि गहना क्या करूं, वो लपेट एक इसमें नैपकिन में डाला, सब कुछ बांधा और बाबा को समर्पित कर लिया। एक सेकंड में इतना निश्चय, इतना त्याग इन सभी दादियों ने किया है। जब इन दादियों का त्याग देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि हमने कुछ नहीं किया है अभी तक। उन दिनों में तो इतनी सुविधा नहीं थी, यहाँ अभी इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी कभी लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी दादियों को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, उनके त्याग के आगे हमारा त्याग बहुत छोटा त्याग है, बहुत थोड़ा है। मनमोहिनी दीदी है ना, सभी के मन को मोह लेने वाली दीदी मनमोहिनी। बाबा से अटूट प्यार था, हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी एकता, एक दो की राय को सम्मान देना, हर एक की विशेषता को देखना। दीदी की इन्हीं विशेषताओं ने यज्ञ को निर्विघ्न रूप से चलाने में मदद की। आपका जीवन का मंत्र था अब घर जाना है। सभी कहते हैं दीदी की जो परखने की शक्ति थी बहुत ही जबरदस्त थी, जिनको भी देखते थे एक पांच मिनट में पता चल जाता था, इस आत्मा का हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पता चल जाता था, उनके सारे संस्कार पता चल जाता था। माना इनकी बुद्धि जो है बहुत ही तीक्ष्ण थी, बहुत डिस्क्रिमिनेशन पावर, परखने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। तो इसीलिए बाबा जब अव्यक्त हुए, प्रकाशमणि दादी के साथ साथ मनमोहिनी दीदी को भी रखा और संस्था को बहुत सुचारू रूप से, जब तक दीदी रहे, बहुत सुचारू रूप से आप चलाते रहे। और जो भी यज्ञ का जो इंटरनल मैटर्स था तो दीदी देखते थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड। और आप कौन है? विश्व किशोर भाव कौन थे? यज्ञ के बहुत ही आदि रत्न भाव विश्व किशोर, बाबा के पक्के वारिस, सदा हाजी का पाठ पढ़ने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, बाबा के राइट हैंड तथा त्याग तपस्या की प्रैक्टिकल मूर्त थे। आप लौकिक में ब्रह्मा बाबा के लौकिक बड़े भाई के सुपुत्र थे। माताओं बहनों को सम्मान देने में आप सदा आगे रहे। विश्व किशोर भाव इतने आज्ञाकारी और वफादार थे, बाबा अगर सभी के सामने उनको डांट भी लगाए ना, भाव हमेशा छुप रहते थे। अंदर मन में कभी भी बाबा के खिलाफ कुछ भी ऐसे नेगेटिव विचार नहीं चलता था या वेस्ट विचार चलता ही नहीं था। बाबा जो कहें, हाजी बाबा, हाजी बाबा। और डांट भी इसलिए बाबा लगाते थे, हमेशा ये कहावत है ना संसार में, बहू को अगर सिखाना हो तो बेटी को डांटो बेटी के द्वारा। तो ऐसे अगर लोगों को सिखाना होता था बाबा को, तो विश्व किशोर भाव को सबके सामने शिक्षा देते थे ताकि दूसरे उन शिक्षाओं से सीखे। तो लेकिन भाव को बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बाबा को, बाबा के ऊपर इतना निश्चय था, इतना प्यार था भाव को, तो कभी कुछ भी नहीं बोलते थे। तो इसीलिए बाबा को भी पूरा विश्वास था विश्व किशोर भाव के ऊपर। और जो भी खरीदारी होती थी यज्ञ की, कोई भी खरीदारी भाव करते थे। जब यज्ञ कराची से यहां शिफ्ट करना था, इंडिया में शिफ्ट करना था, तो बाबा ने 3-4 लोगों को का टीम एक बार यहां भेजा था, भारत के अलग अलग जगह देखने के लिए भेजा था। तो उसमें एक भाऊ थे और बड़ी दीदी थे और भी 2-3 भाई बहने थे। तो इनको भेजा और अलग अलग जगह देखा, और माउंट आबू भी आकर के देख करके गए, और फिर ये इस जगह को बाबा ने फिर सेलेक्ट किया। तो जो भी कुछ कारोबार करना था होता था तो भाव को ही हमेशा आगे रखते थे। एक जो कहते थे, एक झोला लगा डालते थे और एक स्टोर रखते थे। तो जहां भी जाते थे अपना खाना बनाते थे, सेवा करते थे, खाना बनाते थे और करते थे और आते थे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही त्याग मूर्त आत्मा विश्व किशोर भाव थे। और संतरी दादी है ना, जो नहीं जानते थे, जानते हैं वो भी पहचाने अभी, है ना, हमारे पूर्वज कौन थे। संतरी दादी की विशेषता क्या है, भाव विश्व किशोर की लौकिक युगल थी। दादी बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही मिलनसार थी। दादी को दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ था, ट्रांस में जाते थे दादी। शिव बाबा से जब भी कोई संदेश व श्रीमत लेनी होती थी तो बाबा संतरी दादी को ही वतन में बाबा के पास भेजते, पर्सनल संदेशी के रूप में। संतरी दादी हमेशा पर्सनल संदेश लेके आते थे बाबा के लिए। दादी बहुत कम और बहुत धीरे बोलती थी। दादी के मन में जो भी संकल्प आता था दादी किसी को भी बताती नहीं थी, कागज पर लिख देती और वो संकल्प समाप्त हो जाता था। कभी भी कुछ व्यर्थ संकल्प चलता है ना, तो दादी हमेशा किसी को बोलते नहीं थे, कागज पे लिख करके सारा बड़ास निकाल देते थे ताकि फिर वो खत्म हो जाता था। तो युगल सहित विश्व किशोर भाव और संतरी दादी दोनों युगल साथ में आए बाबा के पास और परिवार सहित समर्पित हुए थे। ये कौन है, आनंद किशोर दादा। दादा आनंद किशोर दादा लौकिक में बाबा के भतीजे के युगल थे। परिवार सहित अपना सब कुछ यज्ञ में समर्पित किया। दादा को यज्ञ मैनेजर कहते थे। पहले पहले विदेश सेवा में भी बड़ी दादी के साथ जापान यात्रा पर गए। दादा बहुत सुंदर अच्छा इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश में अगर करस्पोंडेंस करना होता था तो दादा बहुत सुंदर लेटर लिखते थे। और ऑफिस का जो भी कारोबार होता था, निर्वर भाई के साथ यहाँ पांडव भवन में, निर्वर भाई का जो ऑफिस है शशिबेन के ऑफिस के बाजू में, तो वहां निर्वर भाई के साथ आप बैठते थे और सारा ऑफिस काम आप करते थे। तो विदेश सेवा में भी आप पहले पहले जापान यात्रा पर गए। दादा पत्र इतना सुंदर लिखते थे कि आज भी उन पत्रों को गवर्नमेंट के ऑफिस में याद किया जाता है। हंसी में एक बार दादा भी बॉम्बे में रहते थे पहले, प्रकाशमणि दादी के साथ साथ वहां। तो एक बार दादी ने आइसक्रीम बनाया, आइसक्रीम बना करके सबको खिलाया, और फिर उसके बाद दादा ने लेटर लिखा बाबा को, बाबा दादी ने आइसक्रीम बनाया, हम सभी ने खाया, लेकिन बाबा दादी को बोलिए ना दोबारा बना के खिलाएं। क्यों? क्योंकि जब पहले बार आइसक्रीम खा रहे थे बाबा की याद नहीं आई, तो हमारे बुद्धि पूरा आइसक्रीम में था, तो इसलिए बाबा को याद नहीं किया, तो इसलिए दोबारा बाबा को याद करके आइसक्रीम खाए। तो इसलिए दादी, क्योंकि डायरेक्टली बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं दादी, तो आप बोलेंगे तो सुनेंगे, तो दोबारा आइसक्रीम बना के खिलाएंगे। तो ना बहुत ही रमणीक भी थे, हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन बहुत ही रॉयल, बहुत ही रॉयल थे, निर्मल शांता दादी, है ना। दादी निर्मल शांता जी, जिन्हें साकार ब्रह्मा बाबा से लौकिक अलौकिक और पारलौकिक पिता का वर्षा प्राप्त हुआ है, अति भाग्यशाली आत्मा कहेंगे कि बाबा के साथ तीनों ही संबंध का अनुभव दादी ने किया, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक पिता का वर्षा, वो संबंध भी अनुभव किया और वर्षा भी प्राप्त किया। चेहरे और चलन से मानो साकार बाबा की ही वे प्रतिमूर्ति रही, दादी को देखते थे ब्रह्मा बाबा की याद आता था, जैसा नाम वैसे ही दादी की निर्मल दृष्टि वृत्ति, दादी की साक्षी दृष्टा स्थिति ने ही उन्हें साक्षात्कार मूर्त बना दिया है, बना दिया था। दादी कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता जोन जो वेस्टर्न जोन जो था वो सब कुछ सभी आप देखते थे, और दादी भी बहुत रमणीक थे, और उन दिनों में जब कराची में रहते थे दादी की ड्यूटी थी वो ट्रक, वो ड्राइव करते थे बाबा को एक भवन से दूसरे भवन में ले आना ले जाना दादी करते थे, ड्राइव करते थे, क्योंकि उन दिनों में भाई कम थे तो बहनों को ही सब कुछ करना होता था कि ड्राइविंग का काम और मैकेनिक का काम भी करते थे, अगर गाड़ियां खराब हो जाती थी अगर रिपेयरिंग करना होता था दादी वो रिपेयरिंग भी करते थे। बहुत सुंदर एक अनुभव दादी ने शेयर किया है, तो बहुत मतलब मेरे साथ वो बहुत मुझे बहुत याद आता है वो घटना। दादी एक बार शेयर करते हुए अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा था कि एक बार यहाँ बेगरी पार्ट जब चल रहा था माउंट अबू में, बहुत ठंड हुआ करता था ना उन दिनों में, ठंडी के दिनों में बहुत ठंड पड़ती थी यहाँ, और दादी को अस्थमा था, और एक बार बाबा ने सबको अलग अलग प्रोग्राम्स देते थे, कभी ये छाछ पीने का प्रोग्राम होता था या कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स देते थे, तो हर एक आत्मा का निश्चय चेक करते थे, टेस्ट करते थे बाबा। तो दादी का भी निश्चय टेस्ट किया एक बार, दादी को कहा कि बाबा संदेश आया, एक्चुअली ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं कहा, एक दादी को संदेश में भेजा था, तो दादी संदेश लाए, और संदेश ये था कि निर्मल शांता दादी को, उन दिनों में अस्थमा बहुत ज्यादा हो गया था, तो दादी को ये संदेश आया कि दादी को बाथरूम में बिठाना है, कपड़ा उतार करके बाथरूम में बिठाना है, और ये जो संदेश, ये जो संदेश लेके आए हैं वो दादी, ये जो मग होता है, मग से ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी दादी के सिर पे डालेंगे, ये प्रोग्राम था, और ये भी निश्चय का टेस्ट था, और दादी को बताया गया कि ये प्रोग्राम आया है अव्यक्त बाबा से, इस प्रोग्राम आया है, तो दादी ने कहा ठीक है, और ब्रह्मा बाबा भी हिल गए, अभी ऐसा संदेश आया है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर से तो होता है ना कि बच्ची कहा अस्थमा है और ठंडा पानी अगर डाल दे तो शरीर छोड़ भी सकती है आत्मा, है ना। तो लेकिन दादी को दादी जाकर के बाथरूम में बैठ गए और फिर वो जो संदेशी बहन थी तो वो मग में पानी उठाया, ठंडा पानी, और डालने ही वाले थे और बाबा ने उनको खींच लिया ऊपर, संदेह वो ट्रांस में ले गए और फिर बाबा ने कहा कि बच्ची पास हो गई। तो बाबा हाँ ताली बजा सकते हैं कि बाबा ऐसे टेस्ट लेते थे, हर आत्मा के निश्चय का टेस्ट लेते थे। तो बता दी उसमें लेकिन पास हो गए, थोड़ा भी डगमगाए नहीं बाबा। उनको पता था कि जिंदगी जब भगवान को दे दी है, अगर शरीर भी छोड़ दिया तो वो जवाबदार है ना, हम थोड़ी जवाबदार है। तो इसलिए इतना निश्चय बुद्धि होकर के बैठे और उसमें पास हो गए, ऐसे थे। हाँ अस्थमा ठीक भी हो गया था उसके बाद। देखो बाबा का मिराकल है ना, चमत्कार है। चंद्रमणि दादी, चंद्रमणि दादी कौन थे? एडिशनल चीफ भी थे संस्था की और पंजाब की शेरनी बाबा कहते थे। बाबा दादी को पंजाब की शेर कहते थे। दादी की भावनाएं बहुत निश्चल थी, सदा गुणग्राही, निर्दोष वृत्ति वाली, सच्ची साफ दिल वाली, निर्भय शेरनी थी। जब यज्ञ स्थापन हुआ 1936 में, जब छोटे छोटे बच्चे आ गए थे तो वो हॉस्टल जब खोला, दादी भी एक टीचर थे, सभी बच्चों को देखभाल करने के लिए। दादी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हिम्मत वाली दादी थे और दादी का पूरा परिवार, मात पिता और बहनें, पूरा परिवार सहित समर्पित हुए थे। और पंजाब हरियाणा जो भी ये एरिया है उसकी सेवा दादी ने बहुत अच्छी की। और वहाँ उन दिनों में आतंकवादी थी, आतंकवाद था, तो उन दिनों में बहुत तपस्या कर करके भाई बहनों को बिठा बिठा करके तपस्या कराया और पूरी तरह उस एरिया से जो भी आतंकवाद था तो वो पूरा खत्म करवाई। उनके तपस्या के बल के आधार से चंद्रमणि दादी इतने तपस्या करते थे। यहाँ भी मुझे याद है कभी कभी शाम को दो दो घंटा बैठ करके दादी तपस्या करते थे। मधुबन में भी हम जब आए 92 में पांडव भवन आ गए थे तो दादी उस समय वहां थे पांडव भवन में, तो कभी कभी दो साइलेंस में रहते थे। और जब बड़ी दीदी अव्यक्त हुए तो प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी और मनोहर दादी को बुलाया यहाँ मधुबन में रहने के लिए। और चंद्रमणि दादी एक मिनट में, ठीक है दादी ने जो कहा, हाजी का पाठ पक्का करके पूरा त्याग करके एक जोन संभालना, इतनी बड़ी जवाबदारी दादी के कंधों पर था, लेकिन एक मिनट में सब कुछ त्याग करके यहाँ आकर के मधुबन में बैठे। आप सोच सकते हैं पूरे जोन संभालना, एक राजा बन करके वो जो कहे सभी उनको फॉलो करते थे, उनको सुनते थे। लेकिन मधुबन में जब आए प्रकाशमणि दादी के नीचे, दादी जो कहे हाजी दादी, हाजी दादी। दादी भी कम नहीं थे ना, चंद्रमणि दादी भी आदि रतन थे, लेकिन फिर भी प्रकाशमणि दादी को जब पोजीशन पे बिठाया, प्रकाशमणि दादी को संस्था का चीफ जब बनाया, सभी दादियों ने उसको उनको एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 350 बहनें एक जैसी एक साथ जब आए तो ऑलमोस्ट इक्वल थे। ब्रह्मा बाबा एक थे, मम्मा थे, तो उनके नीचे सभी दादियां इक्वल, कोई भी बड़ी और छोटी नहीं थी। लेकिन बाबा अव्यक्त जब हुए, प्रकाशमणि दादी को सीट पर बिठाया, बाकी सब दादियों ने उनको एक्सेप्ट किया। ये है दादियों का त्याग। हम सब कभी सोच सकते थे आपका दिल का जो खुशी है वो प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह पर सीट कुर्सी का किस्सा चलता है ना, ये बड़े छोटे ये बहुत कुछ चलता है, लेकिन दादियां जब ये निमित्त बनकर के बिठा दिया, सभी दादियों ने एक भी संकल्प नहीं चलाया, ठीक है बाबा जो कहे ठीक है, और ना केवल ऊपर से दिल से उनको मान लिया। और यहाँ मधुबन में भी जब आकर के बैठे, और उन दिनों में ज्यादा सेवा नहीं होती थी मधुबन में, जो भी मुरली सुनाना होता था प्रकाशमणि दादी मुरली सुनाते थे, और पंजाब में हर रोज चंद्रमणि दादी सुनाते थे ना मुरली, लेकिन यहाँ सामने आकर के बैठते थे हर रोज, है ना, एक निर्माण होकर के दादी को फॉलो करते थे, हाँ जी का पाठ इतना पक्का करते थे, इसीलिए दादियां हैं, है ना। और अंतिम दिनों में फिर बाद में रुद्र पुष्प दादी जब कर्नाटक जोन के इंचार्ज थे, उनकी लौकिक बहन है ना, दोनों बहनें रुद्र पुष्प दादी बड़ी बहन और चंद्रमणि दादी उनकी छोटी बहन है, और रुद्र पुष्प दादी की तबीयत इतना ठीक न होने के कारण से फिर चंद्रमणि दादी को भी निमित्त बनाया था कर्नाटक जोन के इंचार्ज के रूप में रुद्र पुष्प दादी के साथ साथ देखभाल करने के लिए। तो बार बार चंद्रमणि दादी विजिट करते थे कर्नाटक में, बैंगलोर में आते थे, बहुत अच्छे पालना हम सभी को मिलता था, हर एक के घर में जो अनन्य बच्चे होते थे अनन्य स्टूडेंट्स होते थे उनके घर में भी दादी विजिट करते थे, इतना प्यार दादी हर एक को देते थे, एक तरफ इतना पावरफुल भी थे लेकिन इतना प्यार अपना बनाने का जो संस्कार था, एक पल में दादी अपना बना लेते थे। तो मुझे याद है हमारे लौकिक घर में भी दादी आए एक दिन, वहां रुके क्योंकि एक छोटा शहर था, वहां सेंटर इतना बड़ा नहीं था, तो अपने घर में रहे, दादी की पालना बहुत अच्छी मिली। तो याद आता है उन दिनों में जब मैं पांडव भवन में आई और प्रकाशमणि दादी मुझे वहां रखा पांडव भवन में, चंद्रमणि दादी टूर पे थे, बाद में 15 दिन के बाद जब आए तो जाकर के मिले चंद्रमणि दादी से, और दादी को कहा दादी अभी यहाँ रहने का कहा गया है मुझे। दादी ने बहुत लंबी दृष्टि दी और कहा कि मुझे हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर था, तो अपने जगह पर आ गई ना ये दादी। रुद्र पुष्प दादी बाबा से सच्चे दिल का प्यार और दृढ़ विश्वास बेहद की सेवाओं की नींव बना, बाबा के हजारों बच्चों की पालना करते हुए दादी बहुत लाइट रहती थी, उमंग उत्साह से भरपूर रहती थी। चंद्रमणि दादी की लौकिक में बड़ी बहन थी। रुद्र पुष्प दादी जब बाबा के पास आए 1936 में, एक्चुअली 6 मास पहले उनकी शादी हुई थी और उनके लौकिक पति ने शरीर छोड़ा था, और उन दिनों में कोई भी बहन विधवा बन जाना बहुत बड़ी बात होती थी। विधवा बनना माना जीवन ही जैसे खत्म हो गया, उनकी जिंदगी है ही नहीं, जैसे ना जिंदगी खत्म हो गया, बहुत रोते थे। तो इसलिए किसी ने कहा, कोई सखी ने कहा कि चलिए आपको एक जगह पर लेके जाते तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा। तो फिर ब्रह्मा बाबा के पास लेके आए, तो ओम मंडली में लेके आए, तो पहले बार ही जब बाबा को देखा दादी ने, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और इतने दिनों से जो लगातार रोते थे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होते ही जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, वहां ही उनका जो दुख है वो खत्म हो गया और बाबा के बन गए, और तब से लेकर के उनके उन्होंने अपना जिंदगी बाबा के इसमें समर्पित कर लिया। और दादी बहुत बोली, और उनके घर में भी जो भी चंद्रमणि दादी के जो पिताजी और जो भी पूरा घर था, पूरा परिवार था, बहुत ही धनाढ्य घर के थे, बहुत ही अमीर घर के थे, और उसके कारण से मतलब इनोसेंट दुनिया क्या है, काम कैसे करना है, किचन का काम कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है, कुछ भी पता नहीं है दादियों को। एक बार बाबा ने इन सभी को एक प्रोग्राम दिया, यहाँ माउंट अबू में जब रहने लगे थे, हर दिन नया नया प्रोग्राम मिलता था, तो एक बार सभी को प्रोग्राम मिला कि एक एक दादी अकेले एक एक करके मम्मा के कमरे में जाएंगे और मम्मा उनके लिए पुरुषार्थ के लिए कुछ बातें बताएंगे, क्या कमियां हैं, किस में अभी प्रोग्रेस करना है, वो पर्सनल प्रोग्रेस के लिए बातें बताएंगी। तो एक एक दादी आते थे, फिर बातें करते थे मम्मा से, बाहर आते थे दूसरे दादी जाते थे। तो रुद्र पुष्पा दादी का भी टर्न आया और मम्मा और रुद्र पुष्पा दादी दोनों क्लासमेट्स थे, जिस कारण से मम्मा दादी को बहुत रेस्पेक्ट देते थे, एक सखी के रूप में बहुत रेस्पेक्ट देते थे। तो रुद्र पुष्पा दादी गए, दादी को टिक्कन दादी कहते थे, दादी वहां गए मम्मा के सामने बैठे और मम्मा ने कहा कि दादी आपके अंदर तो कोई कमियां नहीं, आप बहुत ज्ञानी योगी है, बहुत अच्छी आत्मा है, महिमा करने लगे। और दादी कहे कि फिर भी मम्मा आप बताइए, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी कमियों को खत्म करना है, प्लीज बताइए। क्योंकि दादी हमेशा नोटबुक पेन लेकर के पढ़ाई लिखाई करते थे, योग करते थे, तपस्या करते थे और ज्ञान में हमेशा रुचि रखते थे। तो मम्मा ने बहुत समय के बाद मम्मा ने ये कहा कि दादी आप ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, तपस्वी है, लेकिन कर्मणा सेवा में थोड़ा पीछे हैं आप, तो इसलिए कर्मणा सेवा करने की जरूरत है आपको। तो दादी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मम्मा अब आज से मैं कर्मणा सेवा करूंगी। तो बाहर जैसे ही आए तो सभी दादियों को पता चला कि मम्मा ने दादी को कर्मणा सेवा करने के लिए कहा। हर डिपार्टमेंट इंचार्ज कहे कि दादी मेरे पास आओ, दादी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो दादी ने कहा कि ठीक है हर एक डिपार्टमेंट में मैं सेवा करूंगी, लेकिन रोटर बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, तो एक घंटा इस डिपार्टमेंट में, एक घंटा ऐसे पूरा टाइम टेबल बनाया। और एक टास्क ये भी था कि एक कमरा था, क्योंकि उन दिनों में व्हाइट वॉश भी खुद करते थे, चूना था उस समय, डिस्टेम्पर नहीं होता था, चूना करते थे, चूना पोते थे। तो दादी को कहा कि एक कमरा चूना व्हाइट वॉश करना है, तो दादी ने कहा ठीक है। और दादी को पता नहीं है व्हाइट वॉश कैसे किया जाता है, और ब्रश यूज करना है वो भी पता नहीं है। और दादी ने हाथ डाला, चूने के बाल्टी में हाथ डालेंगे तो क्या होता है पता है ना, जलना शुरू होता है। तो फिर भी दादी ने सोचा कि नहीं, बाबा ने ये मुझे दिया है, ये सेवा है, मुझे करना होगा करके वो हाथ से पोताई करने लगे। और उसी समय एक दादी ऐसे गुजर रहे थे और दरवाजे से देखा दादी हाथ से पोता कर रहे हैं और चिल्लाना शुरू किया, दादी आप कर क्या रहे हो। फटक से आए और हाथ धुलवाया, सब कुछ किया, तब तक बाबा तक मैसेज चला गया कि दादी हाथ से पोता कर रहे थे। तो सब कुछ फर्स्ट एड किया, सब कुछ मेडिसिन लगाया, सब क्योंकि हाथ जल गया था, अभी खाना कैसे खाएंगे। अभी बाबा हर रोज दादी को खिलाया, जब तक हाथ ठीक हो तब तक। बाबा ने अपने हाथ से खिलाया, तो ये था ब्रह्मा बाबा का प्यार, है ना। और जब जब सब जगह पर सेवाएं शुरू किया, रुद्र पुष्पा दादी को 5 रुपया दे करके दादी को कहा दादी आपको कर्नाटक जाना है। और कर्नाटक का लैंग्वेज दादी को पता नहीं था, केवल सिंधी और हिंदी जानते थे दादी। ठीक है बाबा ने जो कहा कि बाबा ठीक है जाएंगे। तो वहां यहां से ट्रेन में बिठाया और दादी वहां आए, 5 रुपया लेकर के वहां आए और ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, वहां गार्डन्स में बैठते थे, तपस्या करते थे, और कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं आता था, दादी को इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आता था, और थोड़ा बहुत जो बाबा ने मुरली में थोड़ा बहुत जो इंग्लिश शब्द यूज करते थे वो थोड़ा सा रट करके, वो जोड़ जोड़ करके इंग्लिश सेंटेंस बनाते थे और इंग्लिश में वो कोर्स कराते थे। ऐसे एक बार करुणा भाई आए, सभी जानते हैं ना करुणा भाई को, करुणा भाई आए, बहुत यंग थे, इंजीनियर थे, बहुत अपना इसमें ये था, बहुत गर्व था पढ़ाई का। तो दादी के पास आए और उनको था कि ये क्या सुनाएंगे, अनपढ़ है, फिर भी आए बैठे और दादी बड़े बड़े शब्द इंग्लिश के बोलने लगे, जैसे फिलोंथ्रफी, ऐसे जो बड़े बड़े शब्द है ना, करुणा भाई ने भी सुना नहीं होगा, ऐसे ऐसे जो मुरलियों में जो बाबा ने इंग्लिश शब्द बोले हुए हैं, इनकॉग्निटो वॉरियर्स, ये वो सारा मिला मिला करके थोड़ा बहुत बोल दिया टूटे फूटे इंग्लिश में। बहुत प्रभावित हो गए, और भले लैंग्वेज कैसा भी था लेकिन जो आभा मंडल दादियों के जो वाइब्रेशंस उसको देख करके प्रभावित हुए, तो यहाँ तो ज्ञान तो कुछ तो है। और उन दिनों में मुरली सब कुछ जो लिटरेचर होता था हिंदी में होता था, फिर भी सब कुछ पढ़ पढ़ करके फिर जो थोड़े बहुत फिर स्टूडेंट्स वहां बने गिने चुने, फिर वो लोग फिर ट्रांसलेशन करने लगे, फिर वो सब कुछ ऐसा हुआ कि माना हिम्मत, नए जगह पर जाकर के भाषा नहीं पता है, लोग पता नहीं है, क्या करना पता नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाकर के रह करके इतना जैसे पूरी सेवा का शुरुआत जो है दादी ने, साउथ की जो सेवा है शुरुआत दादी के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, बसवराज भाई जो, और लक्ष्मी बहन जी, रोजी बहन जी, और सुंदरी बहन जो सिटी सेंटर, सभी जो भी आए तो दादी के ही कनेक्शन में आकर के उनके ही, उनसे ही ज्ञान लिया, और अलग अलग जोन और सब जोन्स अभी वो अभी संभाल रहे हैं, और सभी के माँ हृदय पुष्प दादी है हमारी। और दादी की खूबी ये है, जब योग में बैठते थे ना एकदम मग्न हो जाते थे, और गुरुवार के दिन में जब अमृत देना होता था बहुत एक एक आत्मा को ऐसे लंबी दृष्टि दे करके लोग भाग भाग के आते थे, भले इतने भी दूर, इतना मुश्किल भी होता था गुरुवार सुबह सेंटर पे पहुंचना, लेकिन दादी से अमृत जरूर लेना है, वो आकर्षण होता था हमेशा दादी से मिलने का और दादी से अमृत लेने का। और जब राखी बांधने बैठते थे दादी, तो एक एक आत्मा को जो सुबह 5 बजे तैयार होकर के, वहां विश्वेश्वरपुरम बैंगलोर में एक छोटा सा सेंटर था और बहुत छोटे से एक बाबा का कमरा था, वहां नीचे गदेले डाल करके वहां दादी बैठ जाते थे, बैठ के सुबह सुबह अमृत वेले के तुरंत बाद तैयार होकर के 5 बजे बैठ जाते थे और राखी बांधना ब्राह्मणों को, वहां एक एक आत्मा को तीन तीन में पूरा गीत, तीन तीन मिनट तिलक भी लगाना, राखी भी देना, सब कुछ दे करके, कभी कभी 10, 11, 12 बजता था, लेकिन दादी वहां बैठे की बैठे बैठ करके एक एक आत्मा को ऐसे राखी बांधते थे, ऐसे शक्ति भरते थे कि वो उन दिनों को बहुत हम सभी मिस करते हैं, है ना, दादियों की पालना। दादा विश्वरतन, इनको जानते हैं ना सभी, जानते कौन जानते हैं विश्वरतन दादा को, बहुत कम लोग जानते हैं। विश्वरतन दादा भी आदि रतन, जो 350 बहने थे उनमें से 4 भाई थे बस, एक है विश्व किशोर भाव, एक है आनंद किशोर दादा, दादा विश्वरतन और अर्जुन दादा थे, ये 4 पिलर्स थे, इतने सारी बहनों के बीच में सिर्फ 4 भाई थे। चंद्रहास दादा भी थे, ऐसे पक्के ब्रह्मचारी, शीतल काया वाले योगी, ऑलराउंडर सेवाधारी कुमार थे, जिनका उदाहरण बाबा भी देते कि बाबा को ऐसे सपूत सच्चे पक्के पवित्र कुमार चाहिए। दादा की वृत्ति सदा उपराम अनासक्त और सदा त्यागी थे। ज्ञान के हर यज्ञ की हर छोटी व बड़ी सेवा दिल से एक्यूरेट की और हर एक को अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान करके सब कुछ सिखाया। दादा को एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। जब वे योग कराते तो सभा में सन्नाटा छा जाता था। ये प्रैक्टिकल है। जब तक दादा जिंदा रहे तब तक हिस्ट्री हॉल में हर रोज अमृत वेला संदली पर बैठ करके कराते थे। जब वो 4 से 5:15 बजे संदली पर बैठते थे, योग एकदम एक ठीक होकर के, वहां बैक सपोर्ट भी नहीं होता था, उस संदली पर बैक सपोर्ट नहीं है, एकदम स्ट्रेट बैठ करके 45 मिनट्स हिलते नहीं थे, एक पोजीशन में बैठ जाते थे, ऐसे पलटी मार करके ऐसे पोजीशन में बैठ जाते थे और पूरी तरह 45 मिनट्स एकाग्र होकर के ऐसे दृष्टि देते थे सबको, जैसे लगता था कि आंखों से बल्ब जल रहा है, ऐसी रोशनी आती थी, ऐसे प्रकाश मिलता था, ऐसी शक्ति उस आत्मा के अंदर थी और पवित्रता की शक्ति अपरम अपार था। जब कुमार थे तो कहते हैं दादा का ये सेवा था कि सभी दादियों को गर्म पानी का बाल्टी पहुंचाना, क्योंकि उन दिनों में तो अटैच बाथरूम नहीं होता था, टॉयलेट कहीं और बाथरूम कहीं और, तो फिर और एक बड़ा बॉयलर होता था तो वहां गर्म पानी बाल्टी में, वो भी लोहे की बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं होती थी उन दिनों में, लोहे की बाल्टी में गर्म पानी भर के फिर हर एक के कमरे के पास जाकर के रखना दादा का काम था। सुबह सुबह उठ करके अमृत वेले में वो बॉयलर जलाते थे, आग जलाते थे और गर्म पानी करते थे, फिर सभी को गर्म पानी पहुंचाते थे। तो मतलब दादा की जो पवित्रता की दृष्टि थी, हर दादी के प्रति बहुत ही पवित्र दृष्टि थी दादा का, तो इसीलिए बाबा को दादा के ऊपर बहुत निश्चय था, बहुत ही विश्वास दादा के ऊपर था। और बाद में दादा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज बने, रमेश भाई के साथ साथ बहुत समय तक आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखा करते थे। आप जब शरीर छोड़ने के बाद जब होता है ना कि उनके जो बिलोंगिंग्स है कमरे में सारा कुछ समेटा जाता है, तो बहुत कम साधन, जो गिने चुने जो 6-10 जोड़ी कपड़े होते हैं बस उतने, और बहुत ही आवश्यक जो उनके जो चीजें होते, बहुत ही कम साधन, उनको चीजों को समेटना बहुत मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि पहले से ही त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति हर चीज जो भी आता था सब कुछ दान करते थे, सब कुछ देते थे, तो बहुत ही कम साधनों में आप रहे। प्रकाशवाणी दादी मातृ स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन इतनी कुशलता के साथ संभाला कि कोई भी ब्रह्मवत्स भूल नहीं सकता। बाबा की दुलारी सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारका, सभी की विशेषताओं को देखकर उनको कार्य में लगाना दादी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। इन सारी विशेषताओं के पीछे कार्य करती थी दादी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता, और वो थी उनकी पवित्रता की धारणा। पवित्रता इतना जैसे कूट कूट करके दादी के अंदर भरा हुआ था कि हर एक जो भी दादी से मिलते थे सभी को ये भासना मिलती थी दादी मेरी है ना, चाहे वो बीकेज मिले या फिर मेहमान मिलते थे, सभी को ये फीलिंग आता था, ये भावना आती थी दादी मेरी है। तो ऐसे मातृ वात्सल्य से भरी दादी लॉ और लव का बैलेंस रखने वाली, कभी दादी को हम भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। इतने कुशल रूप से संस्था के प्रशासन उन्होंने किया है, हर एक के दिल पर दादी राज्य किया, कि दादी की महिमा की जितना करे उतना कम है, है ना। हर एक को अनुभव है, जिन्होंने भी दादी से मिले हर एक को अनुभव है कि ये दादी की विशेषता ये भी रही कि अगर यहाँ ज्ञान सरोवर में देखते थे, कॉन्फ्रेंसेस होते थे, नॉन बीके गेस्ट यहाँ होते थे, दादी आते थे कि लंबा भाषण नहीं करते थे, 20 मिनट उनका फिक्स्ड था, 20 मिनट दादी आप ज्यादा बोलो नहीं, 20 मिनट बोलते थे, उन 20 मिनटों में सभी का दिल जीत लेते थे दादी। लास्ट में सभी को लगता कि दादी मेरी है, और एक साल एक समय तो ऐसा था दादी स्टेज पे आए और मुझे लगता कि पॉलिटिशियंस में या कोई ऐसा कोई विंग था, कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो दादी ने भाषण किया और दादी ने पता है क्या प्रतिज्ञा कराई सभी से, दादी ने सभी से ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिज्ञा कराई, सभी को बोला कि एक साल पवित्रता की धारणा करके देखो आप, फिर कहना कि आपका अनुभव क्या था। और कोई और बोले तो सभी होता कि क्यों ऐसा, लेकिन दादी इतने अथॉरिटी से इतने प्यार से बोला कि सभी ने बोला कि हाँ दादी आप अगर कह रहे हैं तो हम करके दिखाएंगे। बहुत बड़ी बात थी। और नेक्स्ट ईयर कुछ लोग आए जो कॉन्फ्रेंस में पहले आए थे, नेक्स्ट ईयर वो लोग आए कुछ लोग, और उन्होंने कहा, उन्होंने अनुभव शेयर करते समय उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर दादी ने ये प्रतिज्ञा कराई थी तो हम मैंने प्रतिज्ञा किया और एक साल ब्रह्मचर्य व्रत के पालना की, तो आकर के उन्होंने शेयर भी किया। तो ऐसे अथॉरिटी से दादी बोलते थे, कोई ना नहीं करते थे। तो ऐसे मधुबन निवासी तो दादी के ऊपर जान चिटकते थे, दादी अगर कुछ बोले ना, कुछ कोई बोल ही नहीं सकते थे, बोलते ही नहीं थे कोई, कि वाद विवाद तो करते ही नहीं थे, क्योंकि इतना प्यार दादी का मिलता था कि दादी जो कहे कि दादी हाँ जी दादी। और दादी इतना मधुबन निवासियों के क्लास में दादी इतना डांटते थे, इतना शक्ति रूप देते थे, इतना दिखाते थे और शिक्षाएं भी देते थे, लेकिन फिर लास्ट में प्यार भी इतना देते थे तो फिर वो भूल भी जाते थे कि हाँ शिक्षाएं भी दी लेकिन प्यार भी इतना देते थे, फिर वो याद नहीं रखते थे, इसने ये गलती की थी, उसने ये गलती की थी, ये याद नहीं रखते थे। ये मातृवात्सल्य, शिक्षाएं भी देना लेकिन प्यार भी देना, बहुत अपरम अपार प्यार दादियों ने हम सभी के ऊपर लुटाया है ना। ज्यादा अभी समय नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे पास दादियों का लिस्ट है, लेकिन फास्ट में कुछ लोगों का कहना चाहूंगी। किशनी दादी प्रकाशमणि दादी की लौकिक बड़ी बहन है, आप भी यज्ञ में समर्पित होकर के रहे। और चंद्रहास दादा आदि रक्तों में चार भाइयों में से, पांच भाइयों में से आप भी हैं, और बहुत ही बंधन में थे। और एक बार परिवार वालों ने उनके गला इतना दबा दिया तो उनको मारने की कोशिश की, और इनके कारण से ये जो वोकल कॉर्ड है ना उनका पूरा दब गया था, और फिर उनका वॉइस जो है जैसे लेडीज वॉइस नहीं होता है ऐसा होता था आता था। तो मना उन्होंने बहुत सामना किया है, बहुत सहन किया था, तो बहुत बंधन से निकल करके बाबा में यहाँ यज्ञ में समर्पित हुए। फिर लास्ट में पूरा यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का देखते थे और साउंड डिपार्टमेंट भी आप संभालते थे। गंगे दादी है ना, ये दोनों दादियां, मनोहर दादी और गंगे दादी कानपुर में थे, और मनोहर दादी यहाँ थे ना, गंगे दादी और मनोहर दादी दोनों सखियां थी। तो और इन दोनों का अभी तक भक्ति मार्ग में यादगार क्या है पता है? हर हर गंगे, क्योंकि मनोहर दादी का नाम लौकिक नाम हरी था और गंगे दादी हर हर गंगे। तो ये दोनों दादियां दिल्ली में जो सेवाएं हुई उसको प्रारंभ करने में, वो स्टार्ट करने के लिए निमित्त बने। दोनों दादियों को बाबा ने दिल्ली में भेजा था और वहां बहुत सुंदर उनका अनुभव है मनोहर दादी और गंगे दादी का। जब जमुना घाट पर वो एक ऐसे कुछ जगह पर और धर्मशाला कुछ ऐसा था, तो वो दरवाजा नहीं था उसका, तो ऐसा तो वो रहते थे, लेकिन उनको डर था कोई मना रात को कोई ऐसा ना चाहिए ना जाए, तो वो थोड़े दूर पर वो कुछ अकाड़ा, एक अकाड़ा था जो पहलवानी करते हैं ना, कुछ लोग वो पहलवानी करते थे। और एक मास हो गया था, तो एक मास के बाद वो जो अखाड़े के जो पहलवान थे वो सारे इकट्ठे होकर के दादियों के पास आए कि माला वाला लेकर के दादियों को सम्मान करने के लिए। कि दादियों ने पूछा हमको क्यों सम्मान कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम ना वो कुश्ती के जो कंपटीशन होता है हमने जीता है। तो वो क्यों जीता, अभी तक तो हमने जीता नहीं था, इतने सालों से हम अभ्यास कर रहे थे हमने जीता नहीं, लेकिन इस बार हमने जीता। पता है क्यों? क्योंकि हर रोज रात को आपको हम पैरा देते थे, हमको लगता था कि हमारे पास यहाँ देवियां हैं, खुदा के बंदे आए हुए हैं, देवियां हैं, तो हर रोज रात को हम पहरा देते थे, लगता था ये देवियां हैं, तो देवियों की सुरक्षा की, तो इसीलिए हमने जीता। तो आप सचमुच देवियां हैं, तो इसीलिए वो आकर के दादियों को सम्मान किया। और दादी कहते हैं एक बार क्या हुआ, सेवाएं करने लगे, लोग कुछ सामान लेके आते थे, दादियों को भेंट चढ़ाते थे, तो एक बार एक भाई एक घी का डब्बा लेके आया, दादी को दिया, कि दादी ने सोचा कि ये घी का डब्बा हम क्या करेंगे यहाँ, चलो मधुबन लेके जाते हैं, बाबा को देंगे ये घी का डब्बा। तो घी के डब्बे लेके आए और ये टिकट लेने के लिए पैसा नहीं था दादी के पास, बिना टिकट बैठ गए। और टीटी आकर के पूछा कि टिकट, दादी ने कहा नहीं टिकट नहीं है, नहीं उतरो फिर, अब उतर जाओ टिकट गाड़ी से। दादी फिर उनको ज्ञान सुनाने लगे कि आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, वहां ना यज्ञ रचा हुआ है, यज्ञ में घी समर्पित करने के लिए घी ले जा रही हूँ। ऐसे इतना नशा था दादियों को, इतने नशे से उनको ज्ञान दिया। टीटी ने भी सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ बिना टिकट चलो। तो इतने नशे से, इतने निश्चय से उन्होंने ज्ञान सुनाया और बिना टिकट दादी यहाँ पहुंच गए, है ना। तो बहुत ही नशा रहता था दादियों के पास। यहाँ ज्ञान सरोवर में भी रहे, पहले चंद्रमणि दादी ज्ञान सरोवर जब इनॉग्रेशन हुआ 95 में, तब चंद्रमणि दादी रहे। चंद्रमणि दादी जब अव्यक्त हो गए फिर मनोहर दादी आए, मनोहर दादी काफी लंबे समय तक रहे, 2009 तक रहे। फिर उसके बाद मनोहर दादी जब अव्यक्त हो गए फिर निर्मला दीदी तब से यहाँ है। तो मनोहर दादी की भी बहुत पालना मिली हम सबको यहाँ। लास्ट शांतमणि दादी, हम फिनिश करें, लास्ट शांतमणि दादी का शेयर करके फिर मैं उसको खत्म करूंगी। शांतमणि दादी शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे। शांतमणि दादी एक्चुअली जो पांच चिड़िया बाबा हमेशा मुरलियों में याद करते हैं, पांच चिड़ियों में से दादी एक है। और जो ट्रस्ट बना करके समर्पित किया, बाबा का सारा अचल संपत्ति समर्पित किया था, तो उनमें शांतमणि दादी भी एक है। और कल्प वृक्ष के जड़ों में जो तपस्या में बैठे हुए हैं, शांतमणि दादी भी उनमें से एक है। ऐसे माना जाता है शांतमणि दादी अष्टरत्नों में एक है। और वैसे तो वैसे तो सेवाएं ज्यादा दादी ने मतलब प्रत्यक्ष रूप से दादी ने बहुत ज्यादा सेवाएं नहीं की, लेकिन बहुत ही पंक्चुअल थे। जब हम पांडव भवन आते थे सेवा करने के लिए, सेवाधारियों के इंचार्ज दादी थे, क्योंकि उनका हेल्थ इश्यू ज्यादा था तो इसलिए ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ज्यादा सेवा नहीं कर पाते थे, एक जगह पर बैठते थे और सेवाधारियों को वो पालना देते थे, संभालते थे। और बहुत ही शांत, निश्चिंत, ऐसा कोई भी संकल्प नहीं होता था दादी को, इतने सभी लोग इतना सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं, या कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम निश्चल, एकदम निश्चिंत आत्मा। अगर पांडव भवन आप सभी देखे होंगे तो बाबा जब वो आंगन है, आंगन से जो मेन एंट्रेंस है अंदर जाते हैं, तो वहां अंदर एक रूम है, बहुत छोटा सा रूम है, दादी शांतामणि दादी वहां रहते थे, एक छोटा सा रूम जो एक बेड वहां होता था, बस उतना ही जगह, एक व्यक्ति को खड़ा होने के लिए एक जगह होता था, पूरा उतना ही कमरा था। तो वो लास्ट समय तक ना, और बाद में तो शांतिवन जब बना तो दादी शांतामणि दादी फिर शांतिवन चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि 95-98 तक भी दादी वहां शांतामणि दादी उस छोटे से कमरे में रहे। और वैसे तो आदि रतन है ना, लेकिन फिर भी कुछ भी संकट नहीं होता था, और एक्यूरेसी इतना था शांतामणि दादी, अगर सुबह दादी अगर आंगन में आए, माना घड़ी को आप देख सकते हैं कि शांतामणि दादी आंगन में आए तैयार होकर के, माना वो 6:30 ही होगा, तो एक्यूरेट 6:30 सुबह दादी तैयार होकर के आंगन में आ जाते थे, और एक गाड़ी आती थी तो वो ओम शांति भवन में मुरली सुनने के लिए दादी को लेके जाते थे। तो इतना एक्यूरेट नोटबुक पेन लेकर के वहां बैठ जाते थे, एक्यूरेट हमेशा थे। और मुझे याद है एक बार 2001 की बात है, जब पहली बार मुझे लंदन जाने का मौका मिला था, विदेश पहला ट्रिप था विदेश का मेरा, तो शांतिवन में रह रहे थे शांतामणि दादी, तो सभी से छुट्टी ली, मैं छुट्टी लेकर के फिर जब शांतिवन गए तो ये दिल था कि शांतिवन में शांतामणि दादी से भी छुट्टी लेकर के जाऊं, क्योंकि बहुत पालना ली थी पहले से, शांतामणि दादी के साथ बहुत प्यार था। तो शांतामणि दादी के पास गए कॉटेज में, दादी को बोला दादी मैं लंदन जा रही हूं, और जैसे ही मैंने कहा कि दादी की आंखों में जैसे चमक होता है ना, स्पार्कल जो होता है, स्माइल, अच्छा लंदन जा रही हो, और बहुत प्यार से टोली खिलाया, बाकी पहना, फिर ये सब कुछ करके, फिर मैं बाद में सोचने लगी कि दादी को देखो एक संकल्प नहीं कि आजकल की आई हुई लड़की वो लंदन जा रही है, और मुझे तो एक भी मौका नहीं मिला है विदेश जाने का, एक संकल्प, जैसे एक संकल्प भी आ जाए मन के ऊपर ऐसे पता चलता है ना, वो भी नहीं, जैसे ही बोला कि दादी इतने खुश कि हाँ जा रही हो, खूब सेवा करके आओ, ये करो वो करो, तो इतना प्यार, माना दादियां इसीलिए दादियां हैं, क्योंकि कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष या कुछ ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला, कि कोई सेवा करे तभी वो अष्टरत्नों में आए, ये बात नहीं, कितना त्याग किया है, कितना तपस्या की। तो इन दादियों से बहुत कुछ सीखने की बात है, केवल सेवा करने से हम आगे नहीं बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो यज्ञ के प्रति प्यार, त्याग की भावना, और हर एक को आगे बढ़ाने की जो भावना रही है दादियों के अंदर, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए कभी कभी है ना, सेवा करते करते हम कहीं थोड़ा सा भटक जाते हैं ना, तो मैं फिर दादियों के जो जीवन कहानी है, इन सारे दादियों के जो चित्र है, फोटोज है, वो लेकर के बैठते हैं, इनकी जीवन कहानी सुनते हैं, यज्ञ के जड़ों के साथ फिर जुड़ने की कोशिश जब हम करते हैं, फिर हमें पता है कि हमारा जो लक्ष्य है क्या है, हमारी दादियों की जिंदगी कैसा रहा, हमें भी ऐसा बनना है, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो जितना हम उनके बारे में जाने सीखे वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो लिटरेचर डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे किताब हैं, आदि रतन है, वंदे मातरम है, बहुत सारे ऐसे किताब हैं, दादियों की ऐसे अनुभव लिखे गए हैं, जरूर आप सभी पढ़ना, उन सभी से प्रेरणाएं जरूर लेना और उन जैसे बनने की जरूर पुरुषार्थ करें हम सभी मिलकर के, है ना। ओम शांति।